एज्रा अध्याय चार। अध्याय चार पद एक से लेकर चार तक। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुबाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एसरहद्दोन, जिसने हमें यहां पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुबाबेल, येशू और इसराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुसरू की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। अशूरों के राजा ने उत्तरी राज्य को हराकर वहां के लोगों को तितर बितर कर दिया था और अन्य पराजित राष्ट्रों के निवासियों को लाकर वहां बसा दिया था। अब क्योंकि वो स्थान समरिया कहलाता था, इसलिए वे लोग समरी कहलाने लगे। जब वे इस प्रदेश में आए थे, तब वहां जंगली जानवर थे। इन जंगली जानवरों ने अनेक लोगों को मार डाला था। इस कारण वे राजा के पास आए और कहा, हम इस देश के देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए वन पशु हमें मार डालते हैं। अतः पुजारियों को भेज कि वो हमें इन देवताओं की उपासना करना सिखाए, जिससे कि हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। अशूर के राजा ने याजकों की खोज की, इन लोगों में भेज दिया कि वे इन्हें परमेश्वर की आराधना करने सिखाए। इस प्रकार वे यहोवा का भय मानने लगे, परंतु साथ ही साथ अपने देवताओं की उपासना भी करते थे। कहने का अर्थ यह है कि यहोवा भी उनकी मूर्ति पूजा का एक भाग बन गया था। उनकी उपासना वास्तव में यहोवा की आराधना नहीं थी, ना ही वे इब्राहिम या इसराइल के वंशज थे। अतः वे अपनी उपासना में यहोवा की उपासना को भी पूरा करते थे, जैसे कि उन्हें सिखाया गया था। वे बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि पुजारी ने उन्हें होम बलि, मेल बलि आदि सिखा दी थी। जब यहूदी मंदिर का पुनर्निर्माण कर रहे थे, तब इन लोगों ने आकर कहा, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन वे तो विभिन्न देवताओं की आराधना करते थे। इसलिए जरुबाबेल और येशु और मुख्य पुरुषों ने निर्णय लिया कि उन्हें उनकी सहायता नहीं चाहिए। यदि आज कलीसिया यही विचार रखें तो कितना अच्छा है। हमें परमेश्वर के कार्य के लिए संसार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब कलीसिया ऐसा नहीं करती, और बहुत से कोशिश भी करते हैं कि भवन निर्माण और अन्य कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए किसी की भी सहायता ले, विशेषकर उनसे जो परमेश्वर के सच्चे सेवक नहीं हैं। मैं समझता हूं परमेश्वर के कार्य करने के लिए सांसारिक लोगों की सहायता मांगना गलत है। उन्होंने उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। ये वही लोग हैं जो मसीह के समय में समरी कहलाते थे, और यहूदी इनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। वापस लौटने के 400 वर्ष बाद भी और जब मसीह आया तब भी वे उनसे संबंध नहीं रखते थे। आपको याद है, यीशु मसीह को कुएं पर एक समरी स्त्री मिली थी और यीशु ने उससे कहा था, मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने उत्तर दिया था, तुम मुझसे पानी कैसे मांग सकते हो, तुम यहूदी हो और मैं सामरी। यहूदी समरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। यहूदी जब पर्व मनाने आते थे तब वो यरदन नदी के किनारे किनारे चलकर और यरीहो से होकर आते थे, जबकि समरिया का रास्ता छोटा था, परंतु वे समरिया के निकट भी जाना नहीं चाहते थे। उनके बीच में काफी मनमुटाव था। जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा तब वो समय सताव के दिनों का था। कलीसिया बिखरी हुई थी और यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम यरूशलेम, यहूदिया और समरिया में और दुनिया के हर कोने में मेरे गवाह होंगे। सताव के समय में जब कलीसिया बिखर गई थी तब फिलिप्पुस समरिया गया और वहां मसीह का प्रचार किया और बहुत लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया। वे फिलिप्पुस के हाथों बहुत से आश्चर्य कर्म होते देख रहे थे। जब यरूशलेम की कलीसिया ने यह सुना कि समरिया ने भी सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को वहां भेजा, क्योंकि उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया था। जब वे वहां आए उन्होंने उन पर हाथ रखे ताकि वे पवित्र आत्मा पाए। तभी शिमोन जादूगर ने कहा था, पैसा लेकर मुझे भी ये शक्ति दे दो कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वे भी पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उत्तर दिया, तू और तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने पैसे से परमेश्वर का वरदान खरीदना चाहा है और उससे कहा, प्रार्थना कर कि परमेश्वर तेरे मन की कटुता क्षमा करे। सामरियों ने सुसमाचार ग्रहण किया, उनमें आत्मिक जागृति आई और आज भी करीब 200 सामरी जीवित है। वे करीब विलोप हो गए पर 200 अभी भी है। वे लोग अभी भी नबलूस में रहते हैं जो इबाल और गरिजिम पर्वत की तराई में है, और आज भी ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आराधना गरिजिम पर्वत पर की जानी चाहिए। याद होगा उस स्त्री ने यीशु से कहा जब उसने जाना कि वो नबी है, महोदय मैं समझती हूं कि तुम कोई नबी हो, हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर आराधना की, क्योंकि वे शेकेम में थे और गरिजिम ऊपर था, और तुम लोग कहते हो कि आराधना यरूशलेम में की जाए। परमेश्वर की आराधना कहाँ की जानी चाहिए? वे आज भी फसह मानते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। वे गरिजिम पर्वत पर एक मेमना आज भी बलि चढ़ाते हैं। इन लोगों को सामरी कहते हैं। जैसे मैंने कहा, वे मात्र 200 शेष रह गए हैं और आज भी मानसिक रूप से अधिक विकसित नहीं हैं, क्योंकि वे आपस में ही शादियां करते हैं। इस कारण उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। यही वे लोग थे जो यीशु और जरुबाबेल के पास आए, हम तुम्हारी सहायता करेंगे क्योंकि हम भी तुम्हारे परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम मंदिर के निर्माण में तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने आपस में बातें करके कहा, हमें तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए। जब उनकी सहायता अस्वीकार कर दी गई तो वे उनके विरुद्ध हो गए और पुनर्निर्माण के कार्य में जितना हो सका बाधा डाली। उन्होंने हर मौके पर गड़बड़ करना और बाधा डालना आरंभ कर दिया। अध्याय 4:4, उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपए देते रहे। निषेध आज्ञा लागू करना, कचेरी से आज्ञा निकलवाना, रिपोर्ट लिखवाना आदि अनेक काम उन्होंने किए ताकि वे मंदिर निर्माण में हताश हो जाए। यदि आज आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप जो सोच भी नहीं सकते उन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। अधिकारी तंत्र, उन्होंने उद्देश्य को तोड़ना चाहा। अध्याय 4:5-7 और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। शयर्ष के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थशास्त्र के दिनों में बिशलाम, मिद्दात और ताबेल ने और उसके सहचारियों ने फारस के राजा अर्थशास्त्र को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। पद 11 से लेकर 24 तक जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशास्त्र राजा को लिखी उसकी ये नकल है, तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य है इत्यादि। राजा को ये विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर पनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वो नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन चुकी तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इसलिए हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू ये पाकर जान लेगा कि वो नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचते आया है और इसी कारण वो नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वो नगर बसाया जाए और उसकी शहर पनाह बन चुके तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री और शमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके और सहचारियों के पास ये उत्तर भेजा, कुशल इत्यादि, जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वो मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई और मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वो नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए और जब तक कि मेरी ओर से आज्ञा ना मिले तब तक वो नगर बनाया ना जाए और चौकस रहो कि इस बात में ढीले ना होना। राजाओं की हानि करने वाली वो बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थशास्त्र की ये चिट्ठी राहुम और शिमशे मंत्री और उनके सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बुझबल और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। अर्थशास्त्र के समय में करीब 10 वर्ष तक काम रोका गया। उन्होंने काम शुरू किया, नींव का पत्थर रखा, निर्माण आरंभ किया और तब उन्हें काम बंद करने की आज्ञा मिली। तब उन्होंने मंदिर का निर्माण बंद करके अपने घर बनाने आरंभ किए और अपने स्थान पक्के किए, अपने घरों को सुंदर बनाया और परमेश्वर के भवन को वीरान छोड़ दिया। यदि आप हग्गै का अध्याय 1 पढ़ें तो ज्ञात होगा कि लोगों ने परमेश्वर के घर को वीरान छोड़ दिया था। हग्गै अध्याय 1 पद 4 और 6। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वालों घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। पद 6, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। ऐसा लगता है तुम्हारी थैली में छेद है, तुम पैसे नहीं रख सकते, तुम सदा निराश और असंतुष्ट रहते हो। इसका कारण है कि तुम सब कुछ अपने ऊपर खर्च करते हो और परमेश्वर के घर को उजाड़ छोड़ दिया। इसलिए हग्गई ने लोगों को प्रोत्साहित किया, वापस चलो, हम मंदिर के निर्माण का कार्य फिर आरंभ करें।